प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। आज 3 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्त का नाम है अमरिंद्र सिंह, आप सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को कुछ सूचनाएं मैं जनरली आप सबको दिया करता हूं, तो पहले मैं सूचनाएं देना चाहूंगा। शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं अवेलेबल हो सकेगा आप लोगों के लिए, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स अखबार की जो कटिंग्स होती हैं वो शनिवार को आप लोगों को मिलेंगी। डेफिनेटली संडे को अवेलेबल नहीं कराई जाती हैं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, कहीं आपको ये न लगे कि संडे के अखबार में अगर कुछ छपा है तो वो चीजें आप लोगों को नहीं मिल पाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रविवार के अखबार में यदि कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है तो वह सोमवार के दिन आप लोगों को अवेलेबल कराया जाता है। मतलब ये मत मान करके चलिएगा कि संडे का कोई गैप हो जाता है। साथ ही योजना के 2 आर्टिकल एक हिंदी इंग्लिश में और कुरुक्षेत्र के भी 2 आर्टिकल एक हिंदी इंग्लिश के आपको टोटल 4 आर्टिकल कल प्रोवाइड किए जाएंगे। एक वीकली क्वेश्चन दिया जाता है जो मेन्स एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है ताकि आप धीरे धीरे उसका अभ्यास करते रहें, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ सूचनाएं थी। आज के मुख्य विषय के रूप में मैं उपराज्यपाल के अधिकार पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन मेरी जो बातें हैं आज की ये पूरी तरह से करेंट अफेयर्स पर बेस्ड हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। यानी कि जैसे जो आप उपराज्यपाल के अधिकारों के बारे में किताबों में पढ़ते हैं तो स्थिर चीजें हैं, वो आपको मालूम है, आपने पढ़ी हुई भी होंगी। मैं उन पर चर्चा न करके जो लेटेस्ट बातें हैं उन पर कुछ चर्चा करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले हम कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों लगभग तूफान ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है, और इससे पहले कि तूफान कहर ढाए आप देख रहे हैं कि हमारा देश किस तरह से उसकी व्यवस्था में लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि एक ऐसा अवसर है जब आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई कर लें। डिजास्टर मैनेजमेंट आपके सिलेबस का हिस्सा है, और अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखेंगे तो हर साल कम से कम एक क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से जरूर पूछा जाता है। अभी फिलहाल मैं आपसे केवल ये अर्ज करना चाहूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भारत ने जो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर क्या है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर क्या होता है, दूसरी टीम जो रेस्क्यू करने की जो टीम बनाई गई है वो कौन कौन सी है, किस किस तरीके की है, और वो किस तरह से समन्वय करके फिर काम को अंजाम देती है, ये पूरा का पूरा हमारा एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। और ये बेहतर है कि आप इसे अभी पढ़ लें, और कल के दूरदर्शन न्यूज में आपने बकायदे सुना होगा कि किस तरह से आपातकाल की इस स्थिति को देखते हुए बकायदे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी मीटिंग हो रही है। देखिए जब प्रधानमंत्री किसी भी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हों इसका मतलब है कि वो जो मीटिंग है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। दूसरी जो खबर है मित्रों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एडिटोरियल कमेंट मुझे पढ़ने को मिला है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और मैं चाहूंगा कि इसे आप रेफरेंस के रूप में नोट कर लें। देखिए सिविल सर्विस में अगर आपको दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा नंबर हासिल करने हैं तो इसका जो एक सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप जिस टॉपिक पर आंसर लिख रहे हैं उस पर कितनी नई से नई चीजों को लेकर के आप आते हैं, आप उदाहरण देंगे एग्जाम्पल वगैरह के रूप में, आप कितनी लेटेस्ट चीजों को शामिल कर पाते हैं। इसमें जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एडिटोरियल लिखा है वो है बाबूज डे आउट। कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक में जो सिविल सर्वेंट हैं उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी अगर चाहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि कर्नाटक के शिवमोगा के एक तहसीलदार हैं, राइट। उन्होंने क्या किया कि अपना वेश बदला, और वेश बदलने के बाद वो जो पत्थरों की खदान होती है ना जहां से गिट्टियां वट्टियां निकलती हैं, वहां वो मजदूर का वेश लेकर के बदल करके गए और वहां उन्होंने काम किया, और काम करने के बाद वहां जो इरेगुलरिटीज हो रही थी उन इरेगुलरिटीज को समझा, उन्हें वाच किया, और इसके बाद वापस आकर के बकायदे वहां फिर छापा मारा, रेड की, और फिर जो भी आगे की कार्रवाई होती है वो उन्होंने की। ये बताने की कोशिश की गई है इस एडिटोरियल कमेंट में कि हमारे जो नौकरशाह हैं वो कमरों में ही बैठे रहते हैं, लेकिन यदि वो सही मायने में एक्शन लेना शुरू कर दें तो देश का कितना बड़ा हित सध सकता है। और चूंकि ये जो आपके पत्थर की खदानें होती हैं इनका संबंध सीधे सीधे पर्यावरण से होता है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि किस तरह से इस तरह की कोशिशें पर्यावरण को बचा सकती हैं। और दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया गिरोह काम करता है। ये जो पत्थर की खदानें चूना की खदानें होती हैं इनमें बहुत इरेगुलरिटीज होती है, और हमारा जो रेवेन्यू स्टेट का ही रेवेन्यू दुनिया भर का जो अवैध तरीके से जो खदान की जाती है उनमें चला जाता है। तो एक उदाहरण है, केवल एक उदाहरण है। इस उदाहरण को आप अगर कहीं नोट कर लेंगे तो ब्यूरोक्रेसी पर तो आप देखिए कि हर साल सवाल पूछे ही जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके काम आ जाए, निबंध में भी काम आ जाए। मित्रों, मसूद अजहर के बारे में आपने न्यूज में भी सुना है, अखबारों में भी आ रहा है। बस केवल इतनी बात जान लीजिए कि अब चूंकि उन्हें उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया तो कुछ प्रतिबंध उस पर लगा दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसे हथियार नहीं बेच सकेगा, व्यक्ति या संस्था या राष्ट्र। उसके आने जाने पर, विश्व में भ्रमण करने पर उस प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसके जो बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं वो सीज कर दिए जाएंगे। तो इस तरह के कुछ कदम उठाए जाएंगे, तो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं आतंकवादी जो संगठन है वो कमजोर तो पड़ता ही है। तो बस एक थोड़ी सी जानकारी है। आज मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों ये बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, और मुझे लगा कि नहीं, एडिटोरियल कमेंट नहीं कहना चाहिए, आर्टिकल है, एडिटोरियल आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। इसमें कल आपको ध्यान होगा कि मैंने पेप्सिको और आलू उत्पादक हमारे जो किसान हैं उनको लेकर के अभी जो विवाद चल रहा है उसके बारे में चर्चा की थी मुख्य विषय के तहत, और उसके लिए बिजनेस स्टैंडर्ड का आपको एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने उस पर एक आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मेरा प्रयास होगा कि इसका मैं हिंदी वर्जन आपको उपलब्ध करा सकूं। देखिए, चूंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी घोषणा मैंने कल ही कर दी थी, तो आपको अब इस पर कुछ चीजें ऐसी पढ़ने को मिलेंगी जो मेन स्ट्रीम की न्यूज तो नहीं होती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट से वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। साथ ही आज के करंट कंटेंट में एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल आपको दिया गया है दोस्तों, वो है लोकपाल में कितना दम। ये जो हमारे लोकपाल नामक जो संस्था बनाई गई है वास्तव में कितनी पावरफुल है, कितना अपने काम को सही तरीके से ये कर पाएगी, उसको लेकर के आर्टिकल लिखा गया है। और यह आर्टिकल भी आपके पास परमानेंट रहना चाहिए, और अगर आगे और इस पर कोई बात होती है और आपको कोई नए पॉइंट्स उसमें मिलते हैं तो डेफिनेटली वो आपको नोट कर लेने चाहिए। दोस्तों, इन न्यूज के बाद अब मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा उपराज्यपाल के अधिकार के बारे में करने जा रहा हूं। इसके पीछे इसका प्रसंग संदर्भ क्या है? देखिए, संदर्भ यह है कि आपको मालूम है कि किरण बेदी जो आईपीएस ऑफिसर रही हैं वो पुद्दुचेरी में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एक तो हमारे राज्यों में राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश और जो दूसरे किस्म के जो राज्य हैं वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, राइट? गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार में थोड़ा सा फर्क तो होता है, लेकिन वो राज्य टू राज्य डिफर भी करता है। पिछले कुछ समय से लगातार ये देखा जा रहा था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो जो राज्य सरकार है, चुनी हुई राज्य सरकार है, वहां बकायदे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की अपनी कैबिनेट है, वो जो निर्णय लेते थे और वहां की जो ब्यूरोक्रेसी थी उन पर उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था कि नहीं, फाइल मेरे थ्रू जाएंगी, या राज्य सरकार कोई निर्णय ले रही है और उनके उपराज्यपाल उसमें हस्तक्षेप कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो निर्वाचित राज्य सरकार है उसको काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो फिर उसको लेकर के हाईकोर्ट में, मद्रास हाईकोर्ट में लोग गए, और फिर जो चेन्नई का जो हाईकोर्ट है, जो 5 जजेस का जो बेंच है, उसने एक डिसीजन दिया, उसने फैसला यह दिया कि जो उपराज्यपाल हैं वे मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करेंगे, उनको डे टू डे के काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बकायदे उन्होंने केंद्र सरकार के इस ऑर्डर की भी आलोचना की। ऐसा नहीं है कि जो उपराज्यपाल हैं उनके जो अधिकार हैं वो राज्यपाल की तुलना में ज्यादा हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर उपराज्यपाल राज्य सरकार के किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं है और उनके पास अगर वो मामला आता है तो उसे रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है उनको, वो उसे बकायदे राष्ट्रपति के पास भेजे, फिर राष्ट्रपति उस पर निर्णय लें। और इस तरीके से कह के आप क्लियरली निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखिए डेमोक्रेसी का मतलब ही है जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार। तो जो मुख्यमंत्री है वो जनता के द्वारा निर्वाचित है, लेकिन जो उपराज्यपाल या राज्यपाल है वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है, वो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंटेड है। तो अगर डेमोक्रेसी को बचा रहना है तो स्वाभाविक है कि जो निर्वाचित सरकार है उसका अपर हैंड होना चाहिए। और फिर मैं आपको एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप देखिएगा, हिंदू का एडिटोरियल कमेंट है, उसमें उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है और मैं चाहूंगा कि आप इसे नोट भी कर लें। उन्होंने दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं और जो पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल हैं उनके अधिकारों के अंतर को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो पुद्दुचेरी के जो राज्यपाल हैं उनका जो वहां वो जो राज्य बना है पुद्दुचेरी लेजिस्लेचर जो बना है वो बकायदे हमारे संविधान का जो आर्टिकल 239A है उसके तहत बनाया गया है, पार्लियामेंट्री लॉ के तहत बनाया गया है, जबकि जो दिल्ली का है वो 239AA के अंतर्गत है। वो जो एनसीटी है नेशनल कैपिटल टेरिटरी उसके उसके जो अधिकार है वो दूसरे राज्यों से अलग है, क्योंकि जो दिल्ली की जो राज्य सरकार है आपको शायद मालूम होगा कि उसको कुछ चीजों के बारे में उसके पास अधिकार नहीं है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि, ये अधिकार वहां की असेंबली के पास नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री के पास नहीं है, जबकि दूसरे राज्य जो चाहे वो संघ आपके पुदुचेरी जैसे ही राज्य के उन्हें उनके पास ये अधिकार है। तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि जो दोनों के जो संवैधानिक स्थितियां हैं जो कानूनी स्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न है, इसीलिए कोई उपराज्यपाल जैसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल अगर दिल्ली के उपराज्यपाल का अनुसरण कर रहे हों तो वो गलत है, दोनों की सीमाएं अलग अलग हैं। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। देखिए सिविल सर्विस की चुनौती यही है और इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर उपराज्यपाल के अधिकार के बारे में कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो बहुत जरूरी है कि आप इस ऑर्डर ये जो निर्णय है हाई कोर्ट का इसे शामिल करें। अगर आप इसे शामिल नहीं कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है लेकिन फिर भी वो संपूर्ण या कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप अपने समय के प्रति सतर्क नहीं है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से तीन मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इनके नाम हैं आयुषी नायक सागर मध्य प्रदेश से, राबिया नूर और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों अब इसी के साथ ही आप सबसे दो दिनों के लिए इजाजत चाहूंगा। सोमवार को फिर आप सबसे मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। बीच के ये दो दिन आपके लिए बहुत सुखद हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभिवादन, नमस्कार।